सुंदर प्रश्न है। जो भी हम स्तुति पूजा भी करते हैं या पूजा करते हैं, स्तुति का मतलब होता है उसकी तारीफ करते हैं ईश्वर की। क्या ईश्वर की, इससे ईश्वर खुश होता है या ईश्वर को कुछ फर्क पड़ता है या हम अपने लिए करते हैं? डेफिनेटली ईश्वर को कोई फर्क, अगर ईश्वर को फर्क पड़ता है तो फिर ईश्वर की जो डेफिनेशन है आपको चेंज करनी पड़ेगी। मतलब हमारे अंदर कोई वैक्यूम होता है, कोई खालीपन होता है, तो कोई हमारी जब वो प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, तो हमें खुशी होती है। ये खुशी क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो एक वॉयड है, हमारे इमोशन में जो एक कमी है, वो फुलफिलमेंट नहीं है, वो दूसरों की तारीफ से ही हम उसको भरने की कोशिश करते हैं। जब कोई हमें अप्रिशिएट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम अंदर से काफी हद तक वॉयड है। ईश्वर अगर इस तरह का कुछ है कि उसके अंदर कुछ कमियां है, वो दूसरों की तारीफ सुनकर ही खुश होता है, तो फिर वो एक ईश्वर जो अपने आप में इतनी कमियां लेकर जाता है, वो ईश्वर कैसे हो सकता है? नंबर टू, ईश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना वो आपका खाना खाता है, ना प्रसाद खाता है। नंबर थ्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हमारी स्तुति प्रशंसा सुन के ईश्वर अपने जजमेंट को बदलता है, माइंड चेंज करता है, आपके प्रति कुछ एक्स्ट्रा कृपा या एक्स्ट्रा दया या एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देता है, तो फिर एक बहुत बड़ा अनर्थ होगा। वो अनर्थ क्या है? कि जो एक नेचुरल लॉ जो कर्म है, कि ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगेगा, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो लॉ ऑफ नेचर टूटता है। अब क्या होगा कि आप कितने बड़े पापी हो, बस आप पूजा करो, भक्ति करो, स्तुति करो, सब माफ। और आप कितना भी जेन्युइन हो, ऑनेस्ट हो, आपकी लाइफ चरित्र बिल्कुल शुद्ध है, पर आप ईश्वर को मानते नहीं हो, ईश्वर को पूछते नहीं हो, तो ईश्वर आपको नरक भेजेगा, जैसा कि बहुत सारे रिलीजन में लोग मानते हैं। और डेफिनेटली ये बहुत सुपरस्टिशन है। इसका मतलब, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि आप ऑनेस्ट और जो अपने ऑनेस्टी, अपने शुद्ध कैरेक्टर पर सिर्फ डिपेंड करते हैं, आप इनको डिस्करेज करते हो। बहुत सारे रिलीजन में होता है। तो ईश्वर इनमें से कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों हम स्तुति प्रार्थना उपासना, अगर शॉर्टकट में कहें भक्ति करते हैं? भक्ति इसीलिए करते हैं, जो आपके प्रश्न का सेकेंड हाफ था, क्या हम अपने लिए करते हैं? डेफिनेटली। ये बड़ा साइंस है, और ये साइंस है माइंड की। हमारे एक्टिविटीज के साथ हमारे माइंड का कनेक्शन है, स्टेट ऑफ माइंड है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, जो बहुत बार सुनाया होगा, तो इससे रिलेटेड दोबारा सुनाते हैं। और एक रियल इंसिडेंट है। आर्य समाज के एक बहुत बड़े सन्यासी हुए स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, उन्होंने अपने जीवन में बताया कि वो एक बार हिमाचल प्रदेश में किसी जगह प्रवचन करने गए थे, किसी एक हफ्ते तक का। तो पहाड़ी एरिया है, तो आश्रम एक जगह से दूसरे जगह चल के जा रहे थे। उनके बड़े बड़े दाढ़ी है, मुंछ है, बाल है, जैसे सन्यासी लोग होते हैं, और डंडा है पहाड़ी एरिया में। तो एक बगल में एक गांव के पास बाहर मां बैठी हुई थी रोड के किनारे, और उसका 2-3 साल का बच्चा रोड पर गांव के रास्ते पर खेल रहा था। जैसे ही उसने साधु जी को देखा, क्योंकि एक तो बड़े बड़े बाल है, दाढ़ी मूछ है, डंडा पकड़ के चल रहे हैं, तो वो डर गया। तो डर के मारे जो खेल रहा था, दौड़ के मां की गोद में चिपक के बैठ गया। जब स्वामी जी मां के पास हुए, तो उस बच्चे ने मां के गोद में बैठ करके स्वामी जी को ऐसे मुट्ठी दिखाया, मारूंगा। तो स्वामी जी रुक गए, बड़े चिंतनशील व्यक्ति थे, थिंकर थे, और बड़े इमोशनल हो गए, उनके आंखों में थोड़े आंसू छलक गए। मां को लगा शायद स्वामी जी बुरा मान गए बच्चे ने जो मारने की बोला। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे बेटे ने ना आज मुझे बड़ा ज्ञान दे दिया, इसीलिए मैं बड़ा इमोशनल हो गया। बोले, हम साधु सन्यासी लोग हैं, दुनिया को समझाते हैं भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो, वो करो, बोलते तो बहुत हैं, पर कभी रियलाइज नहीं हुआ था जो बच्चे ने तुम्हें आज मुझे सिखा दिया। बोले, क्या? भक्ति की जो हमारे शास्त्र, भक्ति एक नया वर्ड है, मतलब हिंदू ट्रेडिशन में भी द वर्ड भक्ति इट्सेल्फ इज ए वेरी न्यू फेनोमेना। उसके लिए जो ओल्डन शब्द है वो है उपासना। उपासना का ट्रांसलेशन है टू बी क्लोज टू समवन, किसी के पास होना। तो उन्होंने बोला कि देखो, तुम्हारा बच्चा एक मिनट पहले मेरे से इतना डरा कि डर के मारे भागा और तुम्हारे गोद में चिपक के बैठ गया, और एक मिनट के अंदर क्या चेंजेस हुआ, अब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है कि अब वो मेरे से लड़ने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है। भाई, आदमी तभी मारने को तैयार होते हैं ना जब लगता है अब मैं मार सकता हूं ना। हर आदमी अहिंसक बन जाता है, नॉन वायलेंट बन जाता है सामने अगर पहलवान खड़ा हो, और अगर कमजोर खड़ा हो तो हर आदमी अपनी असलियत दिखाता है। तो बच्चे अपने असलियत दिखाया जब लगा कि अब मैं इससे लड़ सकता हूं। तो ये एक मिनट के अंदर क्या चेंजेस आया कि जो डर है वो इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया। फर्क सिर्फ इतना था, एक मिनट पहले बच्चा मां से दूर था, एक मिनट के बाद बच्चा मां के गोद में है, मां के पास है। उपासना शब्द को अंडरलाइन करिएगा। वो स्वामी जी लिखते हैं, बोले, एक मां भारत में जबकि अपने घर में पति से कितने भी पिटाई खाता होगा, कमजोर, उसके बावजूद भी उस बच्चे को जब अपनी मां के पास में वो पाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका विल पावर इतना ज्यादा हाई हो जाता है, ही आर शी इज जस्ट रेडी टू फाइट विथ एवरी वन। इवन सिकंदर भी आ जाए वो उसको मुट्ठी दिखाएगा, मार डालूंगा। क्यों? उसको पता है मेरे पीछे मेरी मां है। ये जो फीलिंग है कि मेरे साथ मेरी मां है या मेरा पापा है, वो जो कॉन्फिडेंस है या ट्रस्ट है अपने मां पर या पापा पर, वो कॉन्फिडेंस उसके बच्चे के अंदर, वो जो ट्रस्ट बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस लाता है वो इतने हाई लेवल का है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि सामने अगर पहाड़ों जैसा दुख हो, समस्या हो, तो भी वो उसको हंसते हंसते झेल जाता है। क्या स्टोरी की जो मैसेज क्या है, जो चेंज होता है वो आपके माइंड में होता है। मां कुछ नहीं कर सकती है, अगर साधु जी से लड़ाई करना पड़े, मां बहुत कुछ फिजिकली हो सकता है हार भी जाए, पर बच्चा वो नहीं जानता कि मेरी मां कितनी कमजोर है या कितनी स्ट्रांग है। उसको फुल ट्रस्ट है कि मेरे पीछे मेरी मां है। स्वामी जी लिखते हैं, हम लोग दूसरों को समझाते रहते हैं पर असलियत यही है, जिस दिन मुझे अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास हो, ट्रस्ट हो, भक्ति हो, और मुझे पता हो कि मेरे साथ मेरा ईश्वर खड़ा है, वो ईश्वर तुम्हारे अंदर है, वही है उपासना, तो मेरे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो विल पावर इतना स्ट्रांग होगा, मैं अपने लाइफ में वो सब कुछ कर सकता हूं जो नहीं करना चाहता हूं, वो सब कुछ को पार कर सकता हूं जो मैं आज डरता हूं। तो एक सामान्य इंसान महान बन जाता है। जैन ट्रेडिशन में जो साधु सन्यासी होते हैं उनके लिए वीर शब्द यूज होता है, महावीर, है ना। वीर मतलब हीरो, ब्रेव। जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं? सोल्जर्स वगैरह के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना, अपने माइंड को, इंद्रियों को कंट्रोल करना, दुनिया की चीजों से अपने आप को हटाना, तो सबसे सबसे मुश्किल काम है, जो इसको जीते उससे बड़ा वीर कौन होगा। ये भक्ति से व्यक्ति वीर बनता है। तो इसका मतलब जब आपकी ईश्वर के प्रति प्रेम है, अगेन जो समझने लायक है वो जेन्युइन होना चाहिए। आपके दिल में अगर भक्ति है, आपकी स्तुति में अगर वो नेचुरलिटी है, वो ट्रूथ है, आपकी प्रार्थना में अगर वो गिड़गिड़ाहट है, वो जेन्युइन आप तड़प रहे हैं, तो सचमुच आपको वो मिलेगा, सचमुच वो परिवर्तन होगा। पर ईश्वर नहीं करेगा, आप खुद करोगे। उस भक्ति की इतनी पावर है, पर ईश्वर अगर नहीं करता। ईश्वर सबके लिए बराबर है, सबको समान दृष्टि से देखता है। दूसरी भक्ति का जो फायदा है, और एक स्टोरी सुनाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। महात्मा बुद्ध की स्टोरी है। तो एक बार महात्मा बुद्ध हमेशा बोला करते थे, तो उनकी अपनी एक फिलोसॉफिकल स्टाइल है, अमृत बरस रहा है, जिसको लेना है ले जाओ, अमृत समझते ना, नेक्टर। तो उनका एक परम शिष्य था आनंद। जब आपकी बहुत क्लोजनेस हो जाता है ना, तो फिर आपकी वो फॉर्मेलिटी टूट जाती है, तो आप गुरु शिष्य में भी खूब बहस होता है, एक दूसरे को भी हड़काते हैं। जहां भी आपकी रिलेशनशिप में बहुत क्लोजनेस आ जाता है, आप इजीली आर्ग्यू करते हो, फाइट करते हो, कोई बुरा नहीं मानता है। तो उनका परम शिष्य आनंद था, अकेले में पूछा, ये क्या सब जगह बोलते रहते हो, अमृत बरस रहा है ले लो, मैं तो आपके साथ से इतने सालों से, मुझे तो कभी कोई अमृत मिला नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने बोला, देखो तुम्हें नहीं मिला इसका अर्थ नहीं कि अमृत नहीं बरस रहा है। बाजार में बारिश हो रहा हो और तुम्हारे घड़ा अगर नहीं भरा हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि बारिश नहीं हो रही है। तुम्हें चेक करने की जरूरत है कि तुम्हारा घड़ा सही है कि नहीं है, घड़ा में कहीं छेद तो नहीं है, घड़ा उल्टा तो नहीं रखा, घड़े के अंदर पहले कोई सामान ऑलरेडी तो नहीं है, घड़े में पानी नहीं होगा। घड़े में पानी नहीं होगा इसका अर्थ नहीं कि शहर में बारिश नहीं हो रही है। अपना घड़ा ठीक करो, घड़ा सही रखो, ऊपर की ओर मुंह करके में तुम्हारा घड़ा भरेगा। पर क्या है कि जिस दिन तुम्हारा घड़ा भरेगा ना, तब भी तो झूठ बोलेगा, जैसे आज बोलता है। तब क्या बोलेगा, देखो अब बारिश होने लग गई है, अब भी आप झूठ बोल रहे हो, बारिश तो 3 दिन से हो रही थी, पर तुम कह रहे हो कि बारिश अभी हो रही है, क्यों, घड़ा तुम्हारा अभी भरा। ये ईश्वर की कृपा पर होती है। कहते अमृत तो हमेशा से बरसता है। हम अपने ढंग से बात करें, ईश्वर की कृपा सब पर बराबर है, पर क्यों लगता है कि मुझे नहीं मिलता, मैं तो इतने पूजा पाठ भक्ति करता हूं, क्योंकि मैं पात्र नहीं बना हूं। घड़ा क्या है, पात्र है, पात्र समझते, पात्र की संस्कृत हिंदी में 2 मीनिंग है, पात्र मतलब कोई बर्तन और पात्र का मतलब होता है एबिलिटी। मैं वो बर्तन नहीं बना हूं जिसमें पानी ठहर सके, वो पात्र में वो एबिलिटी नहीं आई है, वो घड़ा पानी को होल्ड करने की, रिटेन करने की एबिलिटी नहीं रखता। तुम्हारे अंदर जब वो एबिलिटी आएगी, तो अपने आप तुम फील करने लगोगे कि ईश्वर की कृपा हो रही है। अगर नहीं कर पाते हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी की कमी है। द मोमेंट यू अचीव दैट एबिलिटी, देन यू विल शाउट दैट आई एम गेटिंग द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, स्टिल यू आर रॉन्ग। ईश्वर तुम्हारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा ब्लेसिंग नहीं किया, उतना ही किया जो किसी दुख को सफर करने वाले व्यक्ति को भी कर रहा है। तुमने सिर्फ उस ब्लेसिंग को फील करने की जो एबिलिटी है उसको अचीव कर दिया। और वो कहां से आता है, भक्ति से, प्रार्थना से, स्तुति से। तो ईश्वर की कृपा पाने का जो लायक है वो हम पाते हैं भक्ति से। बाकी ईश्वर सब पर उतना ही कृपा करता है जितना भक्त पर, जितना नास्तिक पर, उतने ही आस्तिक पर, सब पर बराबर करता है। ईश्वर के सामने सब बराबर है। समझ में आया, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी जी।